بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ریڈیو تہران ہے, اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز.
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے. شروتا, آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کریں گے. آج آپ سورہ آلہ کی آیت کرمانک 1 سے 17 تک کی تلاوت اور اس کا انواد سنیں گے. قاری ہیں سورگی محمد صدیق منشاوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير
صدق اللہ العظیم.
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے. ہی پیغمبر, اپنے سروچ پالنہار کے نام کا گنگان کیجئے, جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا, جس نے بھاگیہ نردھارت کیا پھر مارگ دکھایا, جس نے ونسپتی اگائی پھر اسے سوکھا اور کالا بنا دیا. پھر ہم آپ کو شیگر ہی اس پرکار قرآن پڑھائیں گے کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں, سوائے یہ کہ ایشور ہی یہ چاہے کہ نسندیہ وہ ہر سپشٹ اور چھپی بات کو جانتا ہے. اور ہم آپ کو ہر بھلے کار کے لیے تیار کر دیں گے, اتہ نصیحت کیجئے یدی نصیحت لاپ پرد ہو. اور شیگر ہی ایشور سے ڈرنے والا ویکتی نصیحت حاصل کر لے گا, کنتو اتین درباگ والا اس سے کترائے گا وہی جو بڑی آگ میں گر پڑے گا، پھر وہ اس میں نہ تو مرے گا نہ ہی جیے گا۔ نشچت روپ سے جس نے اپنے آپ کو پوتر بنا لیا وہ سفل ہو گیا، اور جس نے اپنے پالنہار کے نام کا اسمرن کیا پھر نماز ادا کی۔ نہیں، بلکہ تم تو سانسارک جیون کو پراتھمکتا دیتے ہو، جبکہ پرلوک ادھک اتم اور شیش رہنے والا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستوں، سبھا میں آپ کا سواگت ہے۔ آج بدھوار ہے، دسمبر کی 28، جمادی ثانی کی 4 اور دئی ماہ کی 7 تاریخ۔ کارکرم میں آپ وگت کی بھاتی پہلے وشو سماچار سنیں گے، پھر وشو سماچاروں کے اپرانت راجنیتک چرچا پیش کی جائے گی۔ راجنیتک چرچا کے اپرانت ہم آپ کو ساپتاہک کارکرم سنوائیں گے آشا کی کرن۔ ہماری آج کی سبھا کا انتم کارکرم ہوگا آج کل۔ تو دوستو، یہ تھی ہمارے آج کے کارکرموں کی روپ ریکھا۔ ہمارے ان کارکرموں کو آپ ویب سائٹ پر اپنی سویدھا کے انوسار دیکھ سکتے ہیں، parstoday.ir/hi۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@ws.irib.ir۔ اور اب کچھ ہی چھڑوں میں ریڈیو تہران سے سماچار پیش کیے جائیں گے۔ یہ تہران ہے۔ اب آپ مریم مہردادی اور قائم رضوی سے وشو سماچار سنیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ جنرل سلامی نے کہا ہے کہ حالیہ گھٹناؤں میں شترو کی ہار ہوئی ہے۔ مصر نے ایران کے ساتھ وارتا پر اپنی تتپرتا کی گھوشنا کی ہے۔ روس نے افریقہ میں داعش دوارا پھر سے خلافت ستاپت کرنے کی سمبھاونا جتائی ہے۔ امریکہ میں اس سال میں 6,000 بچے ہنسا کا شکار ہوئے۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔
IRGC کے کمانڈر نے کہا ہے کہ پوری شکتی پریوگ کرنے کے باوجود شترو کو ایران کے ورودھ ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ تسنیم سماچار ایجنسی کے انوسار ایران کی اسلامی کرانتی سنرکشک بل سپاہ پاسداران کے کمانڈر جنرل سلامی نے کہا ہے کہ حالیہ اپدرو کے دوران شترو نے اپنے انوبھووں کو پریوگ کرتے ہوئے ساری سمبھاوناؤں کا استعمال کیا، کنتو اس کے باوجود اس کو پراجے ہی ہاتھ لگی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو اگر پہلے سے انوبھو نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ پریشانیاں آتی۔ جنرل سلامی نے کہا کہ اب دشمنوں کے بھیتر ہی مت بھید پھیل چکا ہے، وہ ایک دوسرے پر آروپ پرتیاروپ کر رہے ہیں اور پراجت ہونے کے کارن بہت غصے میں ہیں۔ یاد رہے کہ مہسا امینی نامک یوتی کی موت کو بہانہ بنا کر ایران کے شتروں نے دیش کے آنترک معاملوں میں ہستکشیپ کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے حالیہ شانتی کا دروپیوگ کرتے ہوئے اسے اپدرو میں پریورتت کیا۔
اسلامی گنتنتر ایران کے ساتھ وارتا آرمبھ کرنے کے لیے مصر نے اپنی تتپرتا کی گھوشنا کی ہے۔ مصری ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ سمبندھوں کو سامانیہ کرنے کے ادیش سے قاہرہ عراقی میزبانی میں وارتا کے لیے تیار ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے انوسار مصر کے ودیش معاملوں کے کاریکاری ادھیکاری عزت سعد نے سپوتنک سماچار ایجنسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے بتایا کہ بغداد 2 بیٹھک کے بعد قاہرہ اور تہران کے بیچ وارتا کے دوار کھلے ہوئے ہیں۔ اس بیٹھک سے پہلے ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہ یان نے جارڈن کی راجدھانی عمان میں آیوجت بغداد دو بیٹھک کے بعد کہا تھا کہ اس بیٹھک کے دوران عراق کے ودیش منتری محمد شیا السودانی کے ساتھ وارتا میں انہوں نے ایران کے ساتھ کوٹنیتک وارتا کا پرستاؤ دیا تھا۔ اس وارتا میں ایران کے ودیش منتری نے سعودی عرب کے ودیش منتری فیصل بن فرحان سے بھی بھینٹ وارتا کی تھی۔ یاد رہے کہ ایران اور سعودی عرب کے بیچ کئی شیتریہ معاملوں میں متبھید پایا جاتا ہے۔ ورتمان سمے میں دونوں دیشوں کے بیچ کوٹنیتک سمبندھ نہیں ہے، مگر کچھ مہینوں سے دونوں دیشوں کے بیچ بغداد میں وارتا کے کئی دورے ہوئے ہیں۔
ایران کے ودیش منترالے کے پروکتا نے کہا ہے کہ اپنے اپرادھوں کے کارن زائونی شاسن سوئم کے آقاؤں کے سمرتھن کا حقدار ہے۔ ناصر کرانی نے بدھوار کو ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں ایران کے ودیش منترالے کے پروکتا لکھتے ہیں کہ زائونی شاسن دوارا اپرادھ کرنا امریکہ اور یورپ کی دشٹی میں مانوادھیکاروں کا الگھن نہیں ہے، بلکہ اس کام کے لیے اس کا سمرتھن کیا جانا چاہیے۔ ناصر کنعانی نے ایک فلسطینی ادھیکاری کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ سن 2022 کے دوران اویز زائونی شاسن نے 220 فلسطینیوں کی ہتیائیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران کم سے کم 9,000 فلسطینی گھائل ہو گئے۔ زائونی شاسن کے سینکوں نے اسی دوران 6,500 فلسطینیوں کو گرفتار کیا اور ان کی 832 گھروں کو دھوست کر دیا۔ زائونی شاسن نے فلسطینیوں کو آرتھک چوٹ پہنچانے تتھا ان کی کرشی کو نشٹ کرنے کے لیے 13,000 سے ادھک زیتون کے پیڑوں کو کاٹ ڈالا۔
زائونی شاسن کے اپدست پردھان منتری یائیر لاپڈ نے کہا ہے کہ بنیامین نیتن یاہو کی نئی سرکار نے اپنے گٹھن سے پہلے ہی سدھ کر دیا کہ وہ اسرائیل کے اتہاس کی سب سے بدترین و بھرشتتم سرکار ہے۔ سماچار ایجنسی ایرنا کی رپورٹ کے انوسار یائیر لاپڈ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ نئی سرکار کے پردھان منتری پر بھاری اپرادھوں کے کارن عدالت میں مقدمہ چلے گا، یعنی آپ اس سرکار میں اس اپرادھی کو اچ پد پر نیوکت کریں گے جو جیل میں رہ چکا ہے اور دوبارہ اسے جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ لاپڈ نے اسی طرح اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا ہے کہ نئی سرکار کی یہ حالت اسرائیل سے پریم کرنے والے ہر زائونی کی شرمندگی کا کارن ہے۔ لاپڈ نے 24 مئی 2020 کو نیتن یاہو پر گھوس لینے، امانت میں دھوکہ دھڑی اور وشواسگھات و غداری کرنے کے معاملے میں چلنے والے مقدمے کی اور بھی سنکیت کیا۔
روس کا ماننا ہے کہ آتنکوادی سنگٹھن داعش اپنا نیا اڈہ افریقہ میں بنانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ روس نے سمبھاونا ویکت کی ہے کہ افریقہ میں داعش کا نیا اڈہ کھل سکتا ہے۔ افریقہ مہادویپ میں آتنکوادیوں کے جماوڑے کے کارن روس نے یہ بات کہی ہے۔ فارس سماچار ایجنسی کے انوسار پشچیمی ایشیا کے سشستر لڑاکوں کا افریقی مہادویپ پر بھیجے جانے پر ماسکو نے کڑی پرتکریا دی ہے۔ روس کے ودیش اپ منتری نے کہا ہے کہ حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ افریقہ میں داعش کی خلافت کو پنرجیوت کرنے کی کوشش کی جائے۔ متولوف کا کہنا ہے کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مدھیہ پورو میں لڑاکوں کو انٹیریئر افریقہ بھیجا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان حالات میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ اس بارے میں چین، بھارت، پاکستان اور مصر سہت انیہ دیشوں سے بات کی جائے۔ روسی ودیش اپ منتری نے بتایا کہ رپورٹوں کے آدھار پر انتراشٹریہ سنگٹھن پھر سکریہ ہوا ہے اور اپنی ہنسک گتیویدھیوں کے لیے وہ ہر افسر سے لابھ اٹھانا چاہتا ہے۔ روس کے ودیش منترالے میں افریقی معاملوں کے پربھاری نے بھی افریقہ مہادویپ پر آتنکوادیوں کی بڑھتی گتیویدھیوں پر چنتا ویکت کی ہے۔
دکشنی کوریا کے راشٹرپتی نے کہا ہے کہ اتری کوریا کی ہر اکساوے والی کاروائی کا ہم جواب دیں گے۔ یون سی او کے یول کا کہنا ہے کہ اپنے اتری پڑوسی دیش کی کاروائی کا منہ توڑ جواب دینے میں ہم سکشم ہیں۔ پورو ایشیا کے سنچار مادھیموں میں یہ خبر عام ہے کہ اتری کوریا کے کچھ ڈرون دکشنی کوریا کی سیما میں پرویشٹ ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے دکشنی کوریا کی سینا نے اس لیے راشٹر سے کھما مانگی تھی کہ وہ اتری کوریا کے ان ڈرون کو مار گرانے میں وفل رہی جو سومر کو دیش کی وایو سیما میں گھس آئے تھے۔
امریکہ میں اس سال ہونے والی ہنسا میں 6,000 سے ادھک بچے اس کا شکار ہوئے ہیں۔ امریکہ کے سشست ہنسا سے سمبندھت ویب سائٹ نے अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस वर्ष देश में जारी हिंसक कार्रवाइयों में कम से कम 6,000 बच्चे हिंसा की भेंट चढ़ गए। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों के दौरान बच्चों के हिंसा से प्रभावित होने के बारे में ये सर्वाधिक आंकड़े हैं। इस वेबसाइट का मानना है कि 2022 में अमेरिका के भीतर हिंसक कार्रवाइयों के दौरान 6,023 बच्चे इसका शिकार हुए, जिनमें से अधिकांश मारे गए। ये संख्या अमेरिका में एक रिकॉर्ड है। पिछले वर्ष इसी प्रकार की घटनाओं से प्रभावित होने वाले बच्चों की संख्या 5,708 थी।
चीन में कोरोना ने भीषण तबाही मचा रहा है। वहां से जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें देखा जा सकता है कि अस्पतालों में लाशें भरी हुई हैं और शमशान के बाहर लंबी लाइनें हैं। तबाही की सबसे बड़ी वजह कोरोना का BF7 वारंट है, जिसे काफ़ी खतरनाक माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि अस्पताल लाशों से भरे हुए हैं। कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि अंडरग्राउंड पार्किंग्स में लाशों को बांध कर रखा गया है।
भारत के कर्नाटक राज्य के मैसूर में एक चर्च में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की, साथ ही चर्च में जीसस की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। क्रिसमस के 2 दिन बाद मैसूर के पेरियापटना स्थित सेंट मैरी चर्च में ये तोड़फोड़ की गई। फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। पुलिस आरोपी की पहचान के लिए चर्च परिसर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। चर्च के कर्मचारी ने तोड़फोड़ की सूचना पादरी को दी थी।
नेपाल में देर रात एक के बाद एक आए भूकंप के झटकों से लोग सहम गए। बागलुंग जिले में महसूस किए गए भूकंप में झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.7 और 5.3 मापी गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बागलुंग में रात के 1 से 2 बजे के बीच भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। हालांकि इस भूकंप से जानमाल की क्षति की अभी कोई खबर नहीं है।
जापान में भीषण बर्फबारी से आम जनता परेशान है। राजमार्गों पर वाहन फंसे हुए हैं और डिलीवरी सेवाएं बाधित हैं। कई लोगों की मौत अपनी छत से गिरकर हो गई है क्योंकि वो वहां से बर्फ हटा रहे थे। कई लोग बर्फ के नीचे दबने से भी मरे हैं। जापान में हो रही भीषण बर्फबारी ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसकी वजह से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, 90 से ज्यादा लोग घायल बताए जाते हैं। जापान के सैकड़ों घरों की बिजली गुल हो गई है और लोग अंधेरे में रहने पर मजबूर हैं। भीषण सर्दी के साथ ही पिछले हफ्ते से उत्तरी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई। राजमार्ग पर सैकड़ों की संख्या में वाहन फंसे हुए हैं। डिलीवरी सेवाओं में देरी हो रही है, जिसकी वजह से 12 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। रूस कैप प्राइस लगाने वाले देशों को तेल और गैस नहीं देगा, जायजा ले रहे हैं मोहम्मद मेहदी।
रूसी राष्ट्रपति ने नया आदेश जारी कर दिया, जिसके अंतर्गत उन देशों व व्यक्तियों को न तो गैस दी जाएगी और न ही तेल और तेल से बनने वाली वस्तुएं दी जाएंगी, जिन्होंने रूसी ऊर्जा के लिए कीमत निर्धारित की है। इससे पहले रूसी प्रधानमंत्री के सहायक الیگزینڈر نواک نے اعلان کیا تھا کہ ماسکو ان دیشوں کو تیل نہیں بیچے گا جنہوں نے بازار میں تیل کا مولیہ کم پر روک رکھا ہے۔ ماسکو نے بل دے کر کہا ہے کہ تیل کی قیمت کا کم رکھنا اس بات کا کارن بنے گا کہ بازار میں روس اپنا تیل کم پیش کرے گا۔ یورپی سنگ جی سیون اور آسٹریلیا نے روسی تیل کی قیمت پرتی بیرل $60 نردھارت کر رکھی ہے جو 5 دسمبر سے جاری ہے۔ اسی پرکار یورپی سنگ برٹین کناڈا جاپان اور امریکہ نے سمندر کے مادھیم سے روسی تیل پر پرتیبند لگا رکھا ہے۔ روس نے جن دیشوں کو تیل اور گیس نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے واسطو میں یہ وہ دیش ہیں جنہوں نے امریکہ کی اگوائی میں ماسکو کے خلاف کڑا پرتیبند لگا رکھا ہے اور ماسکو نے اپنا تازہ فیصلہ پرتکریا سوروپ لیا ہے۔ پشچمی دیشوں وشیشکر یورپ میں یہ سوچا تھا کہ ان کے پرتیبندھوں سے روس کو بھاری آگاہت پہنچے گا، پرنتو اس سمے جو حالات ہیں اس سے یہ پرتیت ہو رہا ہے کہ یورپی دیشوں نے امریکہ کی ہاں میں ہاں ملا کر بہت بڑی غلطی کی ہے اور روسی گیس نہ مل پانے کے کارن یورپی دیشوں کے لوگوں کو بھاری سمسیاؤں کا سامنا ہے اور بہت سے لوگوں کو کڑاکے کی ٹھنڈک کا سامنا ہے۔ روچک بات یہ ہے کہ امریکہ اپنی گیس یورپ کو بھاری قیمت پر بیچ رہا ہے اور یورپی دیش بھاری قیمت پر امریکی گیس خریدنے پر مجبور ہیں۔ بہت سے جانکار حلقوں کا ماننا ہے کہ روس یوکرین یدھ سے جہاں دونوں دیشوں کو بھاری نقصان ہو رہا ہے، وہیں امریکہ اس یدھ سے بھاری منافع کما رہا ہے۔ پشچمی دیش وشیش کر امریکہ یوکرین کو مدد دینے کے بہانے ہتھیاروں پر ہتھیاروں کی کھیپ بھیج رہا ہے۔ دوسرے شبدوں میں وہ اربوں ڈالر کا ہتھیار یوکرین کو بیچ چکا ہے اور نہ جانے ابھی کتنے ارب ڈالر کا ہتھیار یوکرین کو بیچے گا۔ اسی پرکار جانکار حلقوں کا کہنا ہے کہ امریکہ جو یوکرین یدھ کو لمبا کھینچنا چاہتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہتھیاروں کی بکری ہو سکے۔ امریکہ جو روس یوکرین یدھ کو لمبا کھینچنا چاہ رہا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اس یدھ کے بہانے روس کو کمزور کرنا چاہتا ہے تاکہ دنیا میں اپنا ورچسو جمانے میں اسے اور ادھک آسانی ہو۔ دوسرے شبدوں میں امریکہ اپنے سب سے بڑے پرتسپردھی روس کو کمزور کر کے اسے سائٹ پر لگانے کی چیشٹا میں ہے۔ اسی پرکار بہت سے جانکار حلقوں کا ماننا ہے کہ روس یوکرین جنگ کی آگ بھی امریکہ اور ناٹو نے جلائی ہے اور یوکرین امریکہ اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے والے دیشوں کی نیتی کی بھینٹ چڑھا ہے۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش۔ کاریکرم راجنیتک چرچا۔
امریکہ میں آنے والے بھینکر برفیلے طوفان پر پیش ہے ایک رپورٹ رویش زیدی کی زبانی۔
امریکہ میں آئے برفیلے طوفان کے چلتے اس دیش کے ایک بڑے حصے میں بھیش اور ٹھنڈ جاری ہے۔ کچھ علاقوں میں برف کی اونچائی 107 سینٹی میٹر تک پہنچ گئی ہے۔ پشمی نیو یارک میں لوگوں کو بھاری ہمپات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لگاتار مرنے والوں کی سنکھیا میں وردھی ہوتی جا رہی ہے۔ کئی لوگ ان کی کاروں، گھروں اور برف کے ڈھیر میں مرت پائے گئے ہیں، جبکہ کچھ کی برف ہٹانے کے دوران موت ہو گئی ہے۔ بھاری ہمپات اور طوفان کے کارن جہاں سینکڑوں اڑانیں رد ہو چکی ہیں، وہیں اب کئی شہروں میں سڑک مارگوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ نیو یارک راج میں ایک ضلع کے کاریکاری نردیشک مارک پولونکارز کا کہنا ہے کہ اس آپات سمے میں لوگوں کو جو ایک بات سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ورتمان میں استھتی سامانیہ نہیں ہے۔ لگ بھگ سبھی سڑکیں بند ہیں، دسیوں لوگوں نے اپنی جان گوا دی ہے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں رہیں۔ न्यूयॉर्क राज का बफेलो शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ 43 इंच बर्फबारी हुई है, जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। इस शहर में सबसे अधिक लोग हताहत हुए हैं। बफेलो में कारों, घरों और स्नो बैंक में लोग मृत पाए गए हैं। बफेलो सिटी सेवा निदेशक नाथन मार्टिन कहते हैं कि तूफान और भीषण ठंड ने बफेलो को वीरान कर दिया है। हम लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि शहर को बर्फ से निजात दिलाएं, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। अभी भी हम उन लोगों की मदद को नहीं पहुंच पाए हैं जो दूर दराज के इलाकों में मौजूद हैं। अमेरिका में तूफान और हिमपात के कारण पैदा हुई आपात स्थिति के बाद कुछ लोगों ने बफेलो शहर की दुकानों पर हमला करके लूटपाट शुरू कर दी है। बफेलो के मेयर ब्रायन ब्राउन का कहना है कि ऐसी स्थिति में कि जब लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, कुछ लोग चोरी और लूटपाट में लगे हुए हैं, ऐसे लोग बहुत ही ओछी हरकतें कर रहे हैं, ये सब देखकर बहुत दुख हो रहा है। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान के कारण इस समय इस देश के प्रभावित इलाकों का तापमान 0 से 43 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया है। कई राज्य लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो बिजली का इस्तेमाल कम करें। इस बीच हजारों घरों और व्यवसायियों की बिजली गुल है। ऐसे हालात में अस्पतालों की बिजली को ठीक करने को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं अमेरिका के 50 राज्यों के एयरपोर्टों पर भारी भीड़ जमा है, अफरा तफरी का माहौल है। एक महिला यात्री का कहना है कि हम कई घंटों से हवाई अड्डे पर फंसे हुए हैं। हर दिन हजारों उड़ानें जहां कैंसिल हो रही हैं, वहीं हजारों फ्लाइट्स देरी से उड़ानें भर रही हैं। अमेरिका में आए भारी बर्फीले तूफान ने इस देश के लगभग 25 करोड़ लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। न्यूयॉर्क से IRIB के संवाददाता अली रजबी की रिपोर्ट।
और अब रुख करते हैं भारत का। आज कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस है। ब्यौरा दे रहे हैं दिल्ली से शमशाद काजमी।
भारत के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने आज अपना 138वां स्थापना दिवस मनाया। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित केंद्रीय समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। कांग्रेस के ध्वज आरोहण समारोह में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने न केवल देश को आज़ादी दिलाई बल्कि कृषि, आर्थिक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उद्योग और परमाणु एवं मिसाइल के क्षेत्रों में विश्व के सामने भारत को एक मजबूत देश के रूप में पेश किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 में गठित हुई थी, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ादी के बाद वर्ष 1952 में कांग्रेस पहली बार चुनावी राजनीति में उतरी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1952 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 401 सीटों में से 364 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया था। 1957 के लोकसभा चुनाव में इसे 403 सीटों में से 371 सीटें मिली थीं और वोट प्रतिशत भी 2.8% की बढ़ोतरी हुई थी। कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन 1977 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए बुरा सिद्ध हुआ और आपातकाल के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का मुंह देखना पड़ा और पार्टी का वोट शेयर गिरकर 34.5% पर पहुंच गया था। लेकिन 1980 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने फिर वापसी की और 543 सीटों में से 353 सीटें जीत गई। 1998 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली और इसी साल हुए आम चुनाव में कांग्रेस को 141 सीटें मिली, लेकिन वोट शेयर गिरकर 25.8% पर पहुंच गया। 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 206 सीटें मिली, लेकिन वर्ष 2014 से कांग्रेस का बुरा दौर शुरू हुआ और इस चुनाव में कांग्रेस को केवल 44 सीटें मिली और 2019 के आम चुनाव में भी यही सिलसिला बरकरार रहा और पार्टी केवल 52 सीटें ही जीत पाई और वोट शेयर घटकर 19.5% तक पहुंच गया। इस समय ये पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के तहत अगले आम चुनाव को देखते हुए पार्टी को मजबूत बनाने और खोए हुए जनाधार को वापस लाने का प्रयास कर रही है, जबकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का चुनावी रणनीति से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल कहते हैं कि देश में नफरत का माहौल है और एक समुदाय विशेष को निशाना बनाया जाता है। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, राजनीतिक चर्चा के बाद अब पेश है कार्यक्रम आशा की किरण।
आशा की किरण।
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम आशा की किरण की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। पिछले कार्यक्रम में हमने कहा था कि महान ईश्वर ने पवित्र कुरान में कहा है कि प्रलय के दिन हम लोगों को उनके इमामों के साथ बुलाएंगे, तो जिनका कर्म पत्र उनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा उनका स्थान स्वर्ग होगा, और जिनका कर्म पत्र उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा उनका ठिकाना नरक होगा, और वे हमेशा नरक की दहकती आग में जलेंगे, वहाँ वे न मरेंगे न जिंदा रहेंगे। इसके ठीक विपरीत जो लोग स्वर्ग में जाएंगे वे हमेशा हमेशा स्वर्ग में रहेंगे, अपने पालनहार की नेमतों से लाभ उठाएंगे, वहां वो सब कुछ होगा जिसकी वे कामना करेंगे, उन्हें कभी भी मौत नहीं आएगी। दोस्तों, इसी प्रकार पिछले कार्यक्रम में हमने महामुक्तिदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया था और ये भी कहा था कि महान ईश्वर ने पवित्र कुरान के सूरह अहज़ाब की 33वीं आयत में बल देकर कहा है कि अल्लाह आप अहले बैत को हर प्रकार की अपवित्रता से उस तरह पवित्र रखना चाहता है जिस तरह पवित्र रखने का हक है। पवित्र कुरान की इस आयत ने अहले बैत की पवित्रता पर मुहर लगा दी है और अहले बैत में पैगंबर इस्लाम के समस्त पवित्र और मासूम परिजन शामिल हैं और महामुक्तिदाता भी उन्हीं में से एक हैं। इस आयत की रोशनी में महामुक्तिदाता इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी दानी, त्यागी, अमीन, मृदुभाषी, यहाँ तक कि वो भी समस्त सद्गुणों की प्रतिमूर्ति हैं। वो न्याय सहित समस्त सद्गुणों से सुसज्जित हैं। वो ईश्वरीय विशेषताओं और सद्गुणों की शोभा हैं। वो सद्गुणों और अच्छाइयों के स्रोत हैं। वो भी समस्त पैगंबरों और इमामों की भांति मासूम हैं, यानी हर प्रकार के पाप से पवित्र हैं। वो न केवल किसी प्रकार का पाप नहीं करते बल्कि पापों के बारे में सोचते भी नहीं। श्रोताओं, जैसा कि आपको ज्ञात है कि 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पिता हैं, परंतु माता के बारे में इतिहासकारों के मध्य थोड़ा मतभेद है। अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि हजरत नरजिस खातून आपकी माँ हैं। पैगंबर इस्लाम और उनके पवित्र परिजनों ने इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की माँ को अच्छी और सद्गुणों से सुसज्जित महिला बताया है। महामुक्तिदाता की माता के बारे में सबसे मशहूर रिवायत यह है कि वो रोमी सम्राट के वंश से हैं। इस संबंध में मशहूर दास्तान इस प्रकार है। रोम के बादशाह कैसर के महल में हजरत नरजिस का विवाह समारोह आयोजित होता है। उस वक्त उनकी उम्र 13 साल थी और उनका विवाह कैसर अपने भतीजे से करना चाहता था, اور اس سمے حضرت نرجس کو ملکہ یعنی رانی کہا جاتا تھا، پر جب وواہ سماروہ آرمبھ ہوا تو کراس اور استمبھ گر گئے۔ یہ درشیہ دیکھ کر عیسائی دھرم گرو ڈر گئے اور انہوں نے پریشان ہو کر قیصر سے کہا کہ اس وواہ کو روک دے۔ اس نے بھی عیسائی دھرم گروؤں کی بات مان لی اور اپنے دوسرے بھتیجے کو وواہ کے لیے تیار ہونے کا آدیش دیا، پرنتو اس بار بھی وہی بھیاوہ گھٹنا پیش آئی اور وواہ سماروہ درہم برہم ہو گیا۔ ملکہ نے اسی رات سپنے میں دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا اترادھیکاری شمعون اور کچھ حواری محل میں اکٹھا ہوئے ہیں کہ اچانک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ پوتر پریجنوں کے ساتھ محل میں پرویش کرتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ میں آیا ہوں تاکہ تمہارے اترادھیکاری شمعون کی بیٹی ملکہ کی منگنی اپنے بیٹے ابو محمد یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ کروں۔ حضرت عیسیٰ نے اس منگنی کا سواگت کیا اور وہ بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے حضرت نرجس کا نکاح امام حسن عسکری علیہ السلام سے پڑھ دیا۔ اس سپنے کے بعد حضرت نرجس جاگ گئیں اور ڈر سے انہوں نے کسی کو بھی اس سپنے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس کے بعد حضرت نرجس نے پیغمبر اسلام کے جس پوتر پریجن کو سپنے میں دیکھا تھا اس کے پرتی بہت ادھک پریم کا آبھاس کرنے لگیں، یہاں تک کہ وہ بیمار ہو گئیں اور چکتسک ان کا اپچار نہ کر سکے۔ روم کا تتکالین بادشاہ قیصر حضرت نرجس کو اپنی بیٹی کی طرح بہت مانتا تھا۔ اس نے سوئم حضرت نرجس سے ہی اس کا وکل پوچھا۔ حضرت نرجس نے بہت چالاکی سے کچھ مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیے جانے کو کہا تاکہ شاید حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں حضرت مریم ان کی شفا کے لیے ایشور سے دعا کریں۔ جب کچھ مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیا گیا تو حضرت نرجس نے تھوڑا سا کھانا کھایا تاکہ یہ دکھا سکیں کہ ان کی کچھ طبیعت بہتر ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت نرجس نے دوسرا سپنا دیکھا۔ اس بار انہوں نے سپنے میں دیکھا کہ وہ پیغمبر اسلام کی پران پریہ سپوتری حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم اور سورگ کی 1000 سیوکاؤں کے ساتھ ہیں۔ روم کا یوراج بڑے نمر بھاؤ سے حضرت فاطمہ زہرا سے شکایت کرتا ہے کہ کیوں امام حسن عسکری علیہ السلام ہم سے ملاقات کے لیے نہیں آتے۔ اس کے جواب میں حضرت فاطمہ زہرا کہتی ہیں کہ اس ملاقات کی شرط یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس اپنے کے بعد حضرت نرجس مہان ایشور کی گواہی دیتی ہیں اور پیغمبر اسلام کی گواہی مہان ایشور کے دوت کے روپ میں دیتی ہیں، یعنی وہ وہیں اسلام دھرم سویکار کر لیتی ہیں اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کی سپوتری حضرت فاطمہ زہرا انہیں گلے لگا لیتی ہیں اور امام حسن عسکری علیہ السلام سے ملاقات کی خوشخبری انہیں دیتی ہیں۔ آشا کی کرن۔ مانوتا کے موکش داتا امام مہدی علیہ السلام پر سٹیک بحث پر آدھارت کارکرم آشا کی کرن۔ ہر ہفتے بدھوار کو ایک دن بعد یہ ہوا کہ مہامکتی داتا امام مہدی علیہ السلام کے پتا امام حسن عسکری علیہ السلام حضرت نرجس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک رات کو وہ حضرت نرجس سے کہتے ہیں کہ جو سینا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تمہارے دادا بھیج رہے ہیں اسی سینا کے ساتھ تم ایک سیوکا کے روپ میں ہمارے پاس آ جاؤ۔ امام نے اپنی بھاوی پتنی کو روم سے عراق چلے جانے کی ایک ایسی یوجنا بتائی کہ انہیں مسلمان قیدی بنا لیں اور انہیں بیچنے کے لیے بغداد لائیں۔ حضرت نرجس یعنی ملکہ نے اپنی پہچان چھپائی اور خود کو ملکہ کے بجائے نرجس بتایا۔ اسی وقت امام حسن عسکری علیہ السلام کے پتا امام ہادی علیہ السلام نے بشر بن سلیمان کو بلایا اور ان کی وفاداری کی پرشنسا کی اور رومی بھاشا میں ایک پتر لکھا اور اسے 220 دینار بھی دیے تاکہ وہ ملکہ کو یعنی وہی نرجس خاتون کو خرید لائیں۔ امام نے اس ویکتی کی پہچان بتائی جو بندیوں کو روم سے لا رہا تھا۔ امام ہادی علیہ السلام نے جو پہچان بتائی تھی بشر بن سلیمان اس کے انوسار نیت سمے اور نیت استھان پر پہنچ گئے اور امام نے رومی بھاشا میں جو پتر لکھا تھا اسے حضرت نرجس کو دیا۔ حضرت نرجس پتر پا کر بہت روئیں और जिसने पत्र दिया था उसी के हाथ अपने मालिक से बेचने के लिए कहा। मामला वहीं 220 दीनार पर तय पा गया। इसके बाद बिशर बिन सुलेमान हजरत नरजिस को अपने घर लाया और वहां पर हजरत नरजिस ने सारी कहानी उनसे बयान की। बिशर बिन सुलेमान हजरत नरजिस को बगदाद के उत्तर में वहां पर ले गए जहां इमाम हादी अलैहिस्सलाम रहते थे। इमाम हादी अलैहिस्सलाम वहां पर रोम की शहजादी का स्वागत करते हैं और उनसे कहते हैं और शुभ सूचना देते हैं कि ईश्वर तुम्हें एक ऐसा बेटा प्रदान करेगा जिसका शासन दुनिया के पूरब से पश्चिम तक होगा और वो पूरी दुनिया को उस तरह से न्याय से भर देगा जिस तरह वो अन्याय से भरी होगी। इसके बाद इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने सद्गुणों से सुसज्जित अपनी बहन हकीमा खातून को बुलाया ताकि वो भविष्य में महामुक्तिदाता की होने वाली माँ को इस्लामी आदेशों की शिक्षा दें। इसके कुछ समय के बाद इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने हजरत नरजिस का निकाह अपने बेटे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम से कर दिया। दोस्तों, यहाँ इस बिंदु का उल्लेख जरूरी है और वो ये है कि हजरत नरजिस कनीज नहीं थी बल्कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उत्तराधिकारी शमून की बेटी थी और वो रोम की शहजादी थी। हमजा बिन तैयार नाम का व्यक्ति कहता है कि एक बार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मेरा हाथ पकड़कर एक एक इमाम का नाम लेकर गिनना शुरू किया और जब पांचवें इमाम का नाम आया तो इमाम रुक गए। मैंने कहा कि आप पर कुर्बान हो जाऊं अगर आप एक अनार के दो टुकड़े कर दें और कहें कि आधा अनार हलाल है और आधा हराम तो मैं पूरा विश्वास कर लूँगा और आस्था के साथ आपकी बात स्वीकार करूँगा। यानी आप इमाम हैं, आपका आदेश महान ईश्वर का आदेश है। इस पर इमाम ने फरमाया कि जो कुछ इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है अगर तुम उसे मानते हो और उन पर आस्था रखते हो तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी है और मैं भी उन लोगों की तरह इमाम हूँ। मेरा भी उन्हीं जैसा मकाम व स्थान है और मेरा भी वही दायित्व है जो उन लोगों का दायित्व था। अगर चाहते हो कि प्रलय के दिन उनके साथ रहो जिनके बारे में ईश्वर कहता है कि हम प्रलय के दिन हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे, तो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने जो कहा है उस पर आस्था रखो और जिसने इस दुनिया में अपनी मर्जी से इमाम चुना प्रलय के दिन इमाम और मामूम दोनों उस पर लानत करेंगे। इसी तरह एक अन्य हदीस में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मालिक बिन आयन को संबोधित करते हुए कहा कि क्या तुम्हें हमारे शिया प्रलय के दिन इस बात से खुश नहीं होंगे कि हर गिरोह जो प्रलय के मैदान में आएगा एक दूसरे पर लानत करेगा मगर तुम और तुम्हारे जैसे आस्था रखने वाले ऐसा नहीं करेंगे। बहरहाल हर शिया उन्हीं हस्तियों को इमाम मानता है जिनके नामों का निर्धारण पैगंबर इस्लाम और दूसरे इमामों ने किया है और प्रलय के दिन हम सब का हिसाब किताब महामुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम के साथ होगा। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, अब पेश है सभा का अंतिम कार्यक्रम आज कल।
आज कल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम इस्लामी देशों की अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा करने वाले नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, दुनिया भर के देशों के विकास में नॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका ने आर्थिक विकास के नए अवसर प्रदान किए हैं। दूसरी ओर अरब देशों में इस्लामी जागृति की घटना ने दिखाया है कि अरब देश अब पिछले रुझानों का उपयोग करके अपना विकास जारी नहीं रख पाएंगे और इन देशों में विकास के आदर्श को बदलना होगा। साथ ही अरब देशों के लिए कई चुनौतियां हैं जो मार्गदर्शन करेंगी। दूसरे शब्दों में उन्हें नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए बाध्य करेंगी। इन्हीं चुनौतियों में से एक है लगातार बढ़ती बेरोजगारी। पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देशों में बेरोजगारी दर विश्व के अन्य देशों की तुलना में दोगुनी है, जो मिस्र जैसे देशों में और भी अधिक है। कुछ अरब देशों ने अर्थव्यवस्था में नॉलेज की भूमिका के महत्व को महसूस किया है और नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। वे शिक्षा में सुधार करके अपने मानव संसाधन में सुधार कर रहे हैं, जिससे इन देशों में प्रौद्योगिकी और तकनीकी ज्ञान को अवशोषित करने की क्षमता में काफी सुधार हुआ है। वे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे में निवेश को गंभीरता से ले रहे हैं और यही कारण है कि अरब सरकारों ने कई विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए हैं। सामान्य तौर पर अरब देशों ने उत्पादकता प्रतिस्पर्धा के स्तर में लगातार सुधार लाने और नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था की संरचना के परिवर्तन के लिए एक उपयुक्त मंच बनाने के उद्देश्य से शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, विकास और नवाचार के क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा दिखाई है। ये देश इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था का समर्थन अरबों की वैज्ञानिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आधार प्रदान करता है और छात्रों और समाज के सदस्यों को उन विज्ञानों पर विशेष ध्यान देने का कारण बनता है जो उनके देश के आर्थिक विकास की गारंटी देते हैं। अरब जगत में तीन देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब इमारात और कतर ने नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सऊदी अरब ने नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के उद्देश्य से 20-30 योजना तैयार की है और इसका मुख्य लक्ष्य देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार करना है, नए विश्वविद्यालयों में निवेश करना, विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए इस देश का एक और उपाय है। सऊदी अरब की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक नॉलेज सिटीज नामक परियोजना का निर्माण है, जिसमें पवित्र नगर मदीना भी शामिल है। इस अवधारणा को विश्व की नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था में इस देश की उपयुक्त स्थिति को डिजाइन करने और दुनिया भर से प्रतिभाओं को आकर्षित करने और विकसित करने के उद्देश्य से प्रस्तावित किया गया है। दोस्तों, सऊदी अरब की 20-30 नियम योजना का उद्देश्य इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और तेल से हो रही कमाई पर निर्भरता कम करना है। इस दिशा में काम करने के लिए सऊदी अरब ने कई देशों के साथ रणनीतिक हिस्सेदारी की है। सऊदी अरब ने अपने यहाँ विदेशी निवेश और व्यापार बढ़ाने के लिए अलग अलग स्तर पर कई सुधार किए हैं। आले सऊद शासन के युवराज मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि सऊदी अरब को हरित देश बनाया जाए और गीगा प्रोजेक्ट और नियोम परियोजना उनके इसी विजन का ही एक हिस्सा है। पर्यटन उद्योग की आय के अलावा नियोम शहर इस क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का केंद्र हो सकता है और तेल और हज समारोह की मेजबानी के अलावा ये इस देश में बहुत अधिक आय ला सकता है। 2030 की योजना के अनुसार इन प्रौद्योगिकी केंद्रों को बनाने के लिए आवश्यक पूंजी तेल राजस्व या आरामको के शेयरों की बिक्री से प्राप्त की जाएगी। नियोम शहर के निर्माण की मुख्य धुरी में से एक पर्यटन और औद्योगिक प्रगति के विस्तार के लक्ष्यों के अनुरूप नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग है। ये अनुमान लगाया गया है कि ये शहर नए शहर के निवेशकों के लिए 500 अरब डॉलर से अधिक का लाभ लाएगा। वहीं आलोचकों का आरोप है कि इस परियोजना की मुख्य प्रेरक शक्ति और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान देश के वास्तविक हालात से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पर्यावरण से जुड़े बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। कतर उन अरब देशों में से एक है जिसने दो दशक पहले से नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था के एजेंडे पर काम करते हुए पूरी गंभीरता के साथ इस संबंध में कई तरह के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को आरंभ किया। कतर की सरकार ने दोहा को पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में अग्रणी शैक्षिक केंद्र बनाने की कोशिश की। इसीलिए कतर एजुकेशन साइंस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट फाउंडेशन ने एजुकेशन सिटी की स्थापना की। कतर फाउंडेशन की एक पहल एजुकेशन सिटी की स्थापना है जो दोहा के उपनगरीय इलाके में स्थित है और इस शहर के शैक्षिक कार्यक्रमों को शामिल करता है। इस एजुकेशन सिटी का क्षेत्रफल लगभग 14 वर्ग किलोमीटर है जो स्कूली उम्र से लेकर विश्वविद्यालय स्तर और अनुसंधान केंद्रों तक सभी शैक्षिक सुविधाओं से लैस है। इस शहर के कुल शैक्षिक कार्यक्रमों का नेतृत्व दुनिया के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के विश्वविद्यालय शामिल हैं। इस शहर में बड़ी संख्या में प्रमुख विश्वविद्यालयों की शाखाएं हैं जो छात्रों को प्रशिक्षित करती हैं। नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए मानव पूंजी को प्रशिक्षित करने के अलावा इस शहर में अग्रणी विश्वविद्यालयों की शाखाएं स्थापित करने का एक अन्य लक्ष्य अन्य देशों, विशेष रूप से समान संस्कृति वाले पड़ोसी देशों के अभिजात वर्ग को आकर्षित करना है। संयुक्त अरब इमारात के सबसे प्रसिद्ध शहर दुबई के बारे में तो सभी जानते हैं कि इसको शुरू से ही ज्ञान और नवाचार के आधार पर विकसित किया गया है और परिवहन और रसद केंद्र बनने की रणनीति ने इस देश को पर्यटकों के लिए एक आकर्षक क्षेत्र में बदल दिया है। इसके अलावा इस देश ने प्रौद्योगिकी, मीडिया और दूरसंचार में अपनी क्षमताओं में सुधार किया है। दुबई नॉलेज विलेज 2003 में दुबई के केंद्र में एक वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ स्थापित किया गया था और इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य क्षेत्र में मानव संसाधन प्रबंधन में दुबई को आगे बढ़ाना है। दोस्तों, बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर और मानव संसाधन का समर्थन करके ये नॉलेज विलेज दुबई को नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश कर रहा है। इस नॉलेज विलेज में शैक्षिक सेवाओं के अलावा नर्सरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक आर्थिक गतिविधियां भी की जाती हैं और कई प्रसिद्ध और बड़ी कंपनियां इस माहौल में आर्थिक गतिविधियों में लगी हुई हैं। इस गांव का मुख्य लक्ष्य उद्योग क्षेत्र को शिक्षा के करीब लाना है। इसीलिए उद्योगों और कंपनियों के लिए आवश्यक क्षेत्रों में मानव संसाधन को विशेषज्ञों के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है और उद्योगों के लिए आवश्यक शोध नॉलेज विलेज में मौजूद शिक्षा केंद्रों में किए जाते हैं। शैक्षिक केंद्रों की शोध लागत का एक हिस्सा नॉलेज बेस कंपनियों या नॉलेज विलेज में सक्रिय उद्योगों के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। नॉलेज विलेज का एक और लक्ष्य शिक्षा, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में पर्यटकों को आकर्षित करना है। दुबई नॉलेज विलेज के माध्यम से नॉलेज बेस्ड उत्पादन के विकास और विस्तार के लिए लगातार एक स्थायी बुनियादी ढांचा प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। समान तौर पर अरब देशों में उद्यमशीलता के माहौल में सुधार, व्यापार और विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाना, बेहतर और अधिक शिक्षा प्रदान करना, बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा विकसित करना, उच्च शिक्षा के स्तर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने जैसी नीतियां शामिल हैं। दूसरे शब्दों में इन देशों का उद्देश्य तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना है। आज कतर और संयुक्त अरब इमारात पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रणी देशों में से हैं। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, कार्यक्रम अभी आपने सुना आजकल, जिसे पेश किया रविश जैदी ने। कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में हमें आप ज़रूर बताइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@rateofws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है partstoday.ir/hi। तो इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि। खुदा हाफिज़।